योएल का ग्रंथ और लाओदीकियाई सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया संख्या 43।
संख्या 43। 80 मानवीय याजकों का दिव्य महायाजक के साथ संयुक्त होने का एक प्रतीक संख्या 81 है, और इसी में हमें अर्ली राइटिंग्स पुस्तक में मिलर का स्वप्न मिलता है। प्रकाशित वाक्य 81 में हम पाते हैं कि जब सबसे अंतिम मोहर हटा दी जाती है, तब स्वर्ग में आधे घंटे तक मौन रहता है। हबक्कूक 2:10 कहता है कि जब प्रभु अपने पवित्र मंदिर में हों, तब सारी पृथ्वी मौन रहे।
और जब उसने सातवीं मुहर खोली, तो स्वर्ग में लगभग आधे घंटे तक मौन रहा। प्रकाशित वाक्य 8:1।
सातवीं मुहर का हटाया जाना 29 दिनों के भीतर होता है, क्योंकि वो अंतिम मुहर है। 31 दिसंबर 2023 को यहेजकेल की हड्डियों में पुनरुत्थान की प्रक्रिया आरंभ हुई। तब मसीह ने 40 दिनों तक शिक्षा देना आरंभ किया। उस तिथि ने 18 जुलाई 2020 की निराशा के बाद 1,363 दिनों के अंत को चिह्नित किया, और यूहन्ना हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में सूचित करता है कि हमें मंदिर को मापना है, परंतु आंगन को छोड़ देना है। आंगन का अंत विखराव के अंत पर होता है, क्योंकि यूहन्ना हमें बताता है कि 1,363 अन्य जातियों को दिए गए हैं जो आंगन है। मापते समय उस इतिहास को छोड़ देना है।
जब मिलर जागता है और धूल झाड़ने वाले मनुष्य को देखता है, तो कमरा खाली है, और जब मिलर अपना स्वर ऊंचा करता है, तब भी वह वन्य प्रदेश में ही है। पुनरुत्थान के इतिहास से लेकर रविवार के कानून से ठीक पहले तक मसीह 1,44,000 का मंदिर उसी प्रकार उठा रहे हैं जैसा उन्होंने 1798 से 1844 तक के 46 वर्षों में किया था।
जब वो शिक्षा देना आरंभ करता है, तो वो अपने मंदिर में कार्य करता है, विशेषकर उन 30 दिनों में। तब स्वर्गदूत 30 मिनट तक मौन रहते हैं, जबकि वो अपने याजकों 300 मिलराइट प्रचारकों को शिक्षा देता है, या अपनी सेना गिदोन के 300 को, अथवा जब वो 1843 के 300 चार्टी प्रकाशित करता है, और वो ये सब अखमीरी रोटी के समाप्त होने से लेकर तुरहियों के संदेश तक उन्हीं 30 दिनों में करता है। वो मिलराइट के कक्ष के फर्श को बुहार रहा है, परंतु वो फर्श उसका अपना है, अतः मिलर का कक्ष उसका मंदिर है। वो उन लोगों के पापों या नामों को मिटाने के कार्य को पूर्ण कर रहा है जिन्हें 1,46,000 में सम्मिलित होने के अभ्यर्थी के रूप में बुलाया गया था। तुराही का वो संदेश जो स्वर्गारोहण से 5 दिन पूर्व और न्याय से 10 दिन पूर्व आता है, निर्णायक कसौटी है। स्वर्ग के शांत रहने के 30 मिनटों में, अथवा मसीही द्वारा याजकों को सिखाए जाने के 30 दिनों में जो घटित होता है, वो तुराही, स्वर्गारोहण और न्याय, इन तीन चरणों के दौरान मुहर अंकित किए जाने के समय तक पहले ही दो वर्ग उत्पन्न कर चुका होता है। ये समझना सरल है। यदि आप उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां आपको संदेश की तुरही फूंकनी है, और आप उस संदेश की तुरही फूंकने से इनकार करते हैं, तो आप विफल हो जाते हैं।
तुरही, स्वर्गारोहण और न्याय के ये तीन चरण एक ही मार्गचयन के त्रिचरणीय रूप है, जैसे इतिहास के आरंभ में मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान द्वारा एक मार्ग चिन्ह का निरूपण किया गया था। अंत की ये त्रिचरणीय परीक्षा वो निर्णायक कसौटी है जो पिंतेकुस्त का रविवार विधान आने से 5 दिन पूर्व घटित होती है। पुनरुत्थान के 5 दिन पश्चात अखमीरी रोटी के पर्व का समापन आ पहुंचता है, और वही पवित्र सभा 2024 की प्रथम और आधारभूत परीक्षा को चिन्हित करती है। क्या आप स्वर्ग की रोटी खाएंगे या मानवीय तर्क की रोटी? वो परीक्षा 2024 में आ पहुंची, और उसका पूर्व रूप आदम और हव्वा, निमरोद, हारून, यारोबाम, कोरह और उसके विद्रोहियों, मिलराइट इतिहास के प्रोटेस्टेंटों, जॉन हार्वे केलॉग के अल्फा विद्रोह, सन 1888 के विद्रोह और निस्संदेह नौ गवर के विद्रोह, इन सब के आधारभूत विद्रोहों में प्रस्तुत किया गया था। कैन का आधारभूत विद्रोह आधारभूत विद्रोहों की पूरी श्रृंखला में आपके भाई के प्रति ईर्ष्या के प्रश्न को संप्रेषित करता है। आधारभूत विद्रोह के सभी उदाहरण परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह ही है, परंतु कुछ जैसे 1828 के विद्रोही और कोरह के विद्रोही में यह तथ्य भी सम्मिलित है कि चयनित संदेशवाहक स्वयं परीक्षा का एक अंग होता है। दानियल 11:11 में दर्शन की स्थापना रोम करता है। मिलर का ये प्रतिपादन का अस्वीकार संदेश और संदेशवाहक दोनों का अस्वीकार है। ये परीक्षा आधारभूत है क्योंकि न केवल पिता मिलर ने 14वीं आयत के लुटेरों को रोम के रूप में पहचाना, अपितु मिलर के पुत्र ने भी उन्हें रोम के रूप में पहचाना।
31 December 2023 के पुनरुत्थान के 5 दिन बाद मिलर की तैयारी मूलक शिक्षण सेवा को यूहन्ना के पश्चात आने वाले ने अपने अधीन ले लिया। 30 दिनों तक मंदिर के उपासकों को मसीह द्वारा सामना सामने विशेष शिक्षा दी जाएगी। वो तैयारी इस हेतु थी कि 80 जनों की याजकता तैयार की जाए जो तुरहियों के पर्व के चेतावनी संदेश की घोषणा करे। 30 दिनों की वो तैयारी आरंभ में एक आधारभूत पहली परीक्षा और अंत में एक दूसरी मंदिर परीक्षा से मिलकर बनी है। दूसरी मंदिर परीक्षा नरसिंगे फूंके जाने से पहले समाप्त हो जाती है और इसलिए ये विवरण मिलर के स्वप्न में तब दर्शाया गया है जब मसीह ने रत्नों को पेटिका में डाल दिया। ये करने के बाद ही वो मिलर को आओ और देखो कहकर आमंत्रित करता है। नरसिंगे की चेतावनी से लेकर न्याय के लिए आरोहण तक के काल में रविवार के विधान से पूर्व पताका उठाई जाती है। मिलर को आओ और देखो कहकर बुलाए जाने से पहले सब रत्न मंदिर में है और जब वे 2 साक्षी मेघों में उठा लिए जाते हैं तब उनके शत्रु उन्हें देखते हैं। इस्लाम की ओर से होने वाले आक्रमण के संबंध में उनकी वो भविष्यवाणी जो 2020 में विफल रही उसे सुधार कर पुनः दोहराया जाना है, ठीक वैसे ही जैसे स्नो की सच्ची मध्यरात्रि की पुकार के साथ हुआ था। मिलर के पास एक ऐसा बोध था जिसे उन्होंने मध्यरात्रि की पुकार के रूप में अभिहित किया, परंतु सैक मूवल स्नो ने मिलर की मध्यरात्रि की पुकार के संदेश को संशोधित किया और इसी कारण मिलरवादी इतिहास में स्नो की मध्यरात्रि की पुकार को सच्ची मध्यरात्रि की पुकार कहा जाता है। मध्यरात्रि की पुकार का संदेश वो संदेश है जो संशोधित किया गया है और उस संशोधन के द्वारा सशक्त किया गया है।
निराश जनों ने पवित्र शास्त्रों से समझा कि वे विलंब के समय में थे और कि उन्हें दर्शन की पूर्ति के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। वही साक्ष्य जिसने उन्हें 1843 में अपने प्रभु की प्रतीक्षा करने के लिए प्रेरित किया था, 1844 में उनके आगमन की आशा करने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया। प्रारंभिक रचनाएं 497 शों।
ये घटना 1840 से 1856 वैसी विदेय के अंत में घटी और ये प्रारंभ में भी घटी। जोसिया लिच ने 1840 में इस्लाम संबंधी एक पूर्ति की भविष्यवाणी की। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी को 1838 में सार्वजनिक अभिलेख में दर्ज कराया और फिर 11 अगस्त 1840 से 10 दिन पूर्व उसे संशोधित किया। संशोधित भविष्यवाणी भी पूर्ति ने प्रथम स्वर्गदूत के संदेश को सशक्त किया। दूसरे संदेश को मध्यरात्रि की पुकार के संशोधित संदेश ने सशक्त किया। एक ही इतिहास से 2 साक्षी जो एक अल्फा साक्षी और एक ओमेगा साक्षी हैं, वे मिलकर पूर्ववर्ती संदेश के संशोधन के आधार पर किसी संदेश के सशक्तिकरण की पहचान करते हैं। अल्फा इस्लाम की एक भविष्यवाणी को चिन्हित करता है और ओमेगा बंद द्वार की एक भविष्यवाणी को चिन्हित करता है। पंक्ति पर पंक्ति 1840 में इस्लाम और 1844 में बंद द्वार, मध्यरात्रि की पुकार के संदेश के रूप में इस्लाम और बंद द्वार की पहचान कराते हैं। संदेश के आरंभ में मसीह के विजयी प्रवेश के समान इस्लाम उन्मुक्त होता है। उसी बिंदु पर 10 कुवारियों के दृष्टांत में द्वार बंद हो जाता है, जैसे कि परमेश्वर के घर के न्याय पर द्वार बंद होता है। संदेश की समाप्ति पर जब संयुक्त राज्य पर द्वार बंद हो जाता है तब इस्लाम पुनः प्रहार करता है। ये देखना महत्वपूर्ण है कि लेवीय व्यवस्था 23 से व्युत्पन्न रेखा आरंभ में फसह के 3 चरणों और अंत में याजकों के 3 चरणों की पहचान कराती है। रविवार के कानून के समय याजकों को भेंट स्वरूप ऊंचा उठाया जाता है, परंतु उस घटना से पहले वे शुद्ध कर दिए जाते हैं। जब वे ऊंचा उठाए जाते हैं तो वे ध्वज बनते हैं, और जब रेखा के आरंभ में 3 चरणों में मसीह ऊंचा उठाया गया तब उसने समस्त संसार को अपनी ओर खींच लिया। 144,000 का ऊंचा उठाया जाना उसी रेखा का अंत है जो मसीह के ऊंचा उठाए जाने से आरंभ हुई थी। आरंभ और अंत दोनों में तीन चरणों वाला एक मार्ग चिन्ह पहचाना जाता है। आरंभ में तीन चरण जिनके बाद 5 दिन आते हैं और अंत में 3 चरण जिनके बाद 5 दिन आते हैं। उस बिंदु से आगे वृत्तांत बड़ी भीड़ के विषय में है क्योंकि याजकत्व 144,000 की पताका के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। झोपड़ियों के पर्व के 7 दिन अन्य जातियों के लिए नियत काल है। यदि हम अन्य जातियों के उस समय को छोड़ दें जो रविवार के कानून से आरंभ होता है और उन 3.5 दिनों को भी छोड़ दें जो 2023 में समाप्त हुए, तो 144,000 का मंदिर 31 दिसंबर 2023 से लेकर शीघ्र आगामी रविवार के कानून तक पिंतेकुस्त के काल के 50 दिनों के भीतर निरूपित होता है। पुनरुत्थान से आरंभ होकर कुवारों के लिए 5 दिन, उसके बाद याजकों के लिए 30 दिन, फिर कुवारों की ओर से नरसिंगा का 5 दिन का संदेश जो 40 दिन पूर्ण होने पर उनके स्वर्गारोहण के साथ समाप्त होता है, इसके बाद न्याय तक 5 दिन और फिर रविवार के कानून तक 5 दिन। कुमारों के प्रतीक के रूप में संख्या 5 उन 144,000 के पद चिन्हों को प्रतिपादित करती है जो कुंवारे हैं और जो याजक भी है। शिक्षण के 30 दिनों के दौरान अंतिम अर्थात 7वीं मुहर हटा दी जाती है और उसी अवधि में मिलर रत्नों को पुनर्स्थापित होते हुए देखते हैं। आओ और देखो प्रथम 4 मुहरों पर आधारित एक प्रतीक है, अतः जब 7वीं मुहर खोली गई तो मिलर से आओ और देखो कहा गया, पर स्वर्ग में स्वर्गदूत सब मौन रहकर केवल निहारते रहे। मिलर का स्वप्न उन रत्नों के मुहर बंद किए जाने की पहचान करता है जो 144,000 है, और साथ ही उन रत्नों की भी पहचान करता है जो अर्धरात्रि के आह्वान का संदेश है। वो संदेश कोरेमी होते हैं। वो सामर्थ्य प्रदान करता है जो मुहरबंदी को संपन्न करता है, और धूल झाड़ने वाला पुरुष उस एक की पहचान कराता है जो संदेशवाहकों और संदेश दोनों को नियंत्रित करता है। सन 2024 मूलभूत परीक्षा का द्योतक है और अब सन 2026 में मंदिर परीक्षा आ पहुंच चुकी है। हम अब उस 30 दिवसीय अवधि में हैं जिसमें मसीह शिक्षा दे रहे हैं, और इस तथ्य को न पहचानना प्राणघातक है। संदेश और संदेशवाहक की पहचान करना रोम द्वारा दर्शन की स्थापना से निरूपित उस आधारभूत परीक्षा का एक तत्व था, और एलिया और अहाब के वृत्तांत का भी एक तत्व है।
और यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में उमरी का पुत्र आहाब इसराइल पर राज्य करने लगा, और उमरी का पुत्र आहाब सामरिया में इसराइल पर 22 वर्ष राज्य करता रहा, और उमरी के पुत्र आहाब ने यहोवा की दृष्टि में उससे पहले जो हुए उन सब से बढ़कर बुरा किया, और ऐसा हुआ कि मानो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना उसके लिए तुच्छ बात हो। उसने सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल को पत्नी करके लिया और जाकर बाल की सेवा करने और उसकी उपासना करने लगा, और उसने सामरिया में जो बाल का भवन उसने बनाया था उसमें बाल के लिए वेदी खड़ी की, और आहाब ने एक अशेरा भी खड़ा किया, और आहाब ने उससे पहले जो इसराइल के सब राजा हुए उनसे भी बढ़कर इसराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाया। उसके दिनों में बेतेल का रहने वाला हियेल ने यरीहो का निर्माण किया। उसने अपने पहलौठे अबीराम के समय उसकी नींव डाली और अपने छोटे पुत्र सेगूब के समय उसके फाटक खड़े किए, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहा था। और गिलाद के निवासियों में से तिशबी एलिया ने आहाब से कहा, यहोवा इसराइल का परमेश्वर जिसके समक्ष मैं खड़ा हूँ जीवित है, इन वर्षों में न ओस पड़ेगी और न वर्षा होगी, परंतु केवल मेरे वचन के अनुसार। 1 राजा 16:29-17:1।
आहाब से संबद्ध संख्याएं उक्त पाठांश के संदर्भ में योगदान करती है। 38 उठ खड़े होने का द्योतक है। 38वें वर्ष में इसराइल को उठ खड़े होने और प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने की आज्ञा दी गई थी।
तब मैंने कहा, अब उठो और जेरेद के नाले को पार कर जाओ, और हम जेरेद के नाले को पार कर गए।
और कादेश बरनिया से निकलने के समय से लेकर जेरेद के नाले को पार कर आने तक की अवधि 38 वर्ष की थी, जब तक 38 वर्ष की छावनी के बीच से सब युद्ध वीरों की पीढ़ी, जैसा कि यहोवा ने उनके विषय में शपथ खाई थी, समाप्त न हो गई। व्यवस्था विवरण 2:13-14।
यीशु ने उस अपंग पुरुष को जो 38 वर्ष का था तब चंगा किया जब उन्होंने उससे कहा, उठ।
और वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी से ग्रस्त था। जब यीशु ने उसे पड़े हुए देखा और जान लिया कि वो अब बहुत समय से उस दशा में है, तो उससे कहा, क्या तू भला चंगा होना चाहता है? उस अशक्त मनुष्य ने उत्तर दिया, हे स्वामी, जब जल खलबलाता है तो मुझे कुंड में डालने वाला कोई नहीं, परंतु जब तक मैं पहुंचता हूं, कोई और मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपना बिछौना उठा और चल। और तुरंत वो मनुष्य भला चंगा हो गया और अपना बिछौना उठाया और चलने लगा। और उसी दिन विश्राम दिन था। यूहन्ना 5:5-9।
जोसाया लिच ने 31:37 में एक भविष्यवाणी की, जिसे उन्होंने 31:40 में और परिष्कृत किया। व्यवस्था विवरण में मूसा द्वारा उल्लिखित 38वां वर्ष 40वां वर्ष भी था। जोसाया लिच की 2-चरणीय प्रक्रिया अपने समनाम राजा योशिया की 2-चरणीय जागृति के समानांतर थी। 38 और 40 की संख्याएं एक दूसरे के संबंध में ऊपर उठने का द्योतक हैं, जैसा कि तब होता है जब 2 साक्षियों को बादलों में ऊपर उठा लिया जाता है। लिच के संदर्भ में ऊंचा उठाया जाना दूसरी हाय से संबंधित इस्लाम के संदेश द्वारा संपन्न हुआ। मसीह के स्वर्गारोहण द्वारा चिह्नित वह ऊंचा उठाया जाना इस्लाम से संबंधित तुरही संदेश के बाद आता है। तुरही स्वर्गारोहण व न्याय के इस मार्ग चिन्ह के प्रथम 2 चरण, तुरही और स्वर्गारोहण का प्रतिरूप लिच था, और लिच के ये 2 चरण स्वयं राजा योशियाह की 2-चरणीय जागृति और सुधार द्वारा निरूपित थे। व्यवस्था विवरण में आज्ञा ये थी कि उठो और प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करो, और रविवार के विधान के समय ध्वज का ऊंचा उठाया जाना वही प्रतिज्ञा है। आहाब ने 22 वर्ष राज्य किया, अतः वो उस काल में राज्य करता है जब देवत्व का मानवता के साथ संयोजन होता है। वह वही 30 दिनों की अवधि है जो तुरही के संदेश से पूर्व आती है। आहाब ट्रंप है, जो बहुत निकट भविष्य में इजाबेल से विवाह करेगा। ट्रंप के काल में वर्षा का संदेश केवल एलिया के पास है। ये तथ्य आधारभूत है क्योंकि 144,000 का आंदोलन रेखा पर रेखा साबित तह की कार्यप्रणाली का आंदोलन है, और वो कार्यप्रणाली इस आधारभूत सत्य पर आधारित है कि 144,000 का सुधार आंदोलन पवित्र इतिहास के प्रत्येक सुधार आंदोलन द्वारा प्रतिरूपित किया गया है। उन प्रत्येक आंदोलनों में अगुवे परख की प्रक्रिया का भाग थे। हर बार आहाब यारोबाम से गिनने पर 7वां राजा है, और हमने बार बार ये दिखाया है कि रविवार के कानून के संकट के समय आहाब राज्य सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। हमने ये भी दिखाया है कि लाओदीकियाई सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया ने 1863 में यरीहो का पुनर्निशानामा में, जिसकी कीमत वाइट्स को अपने ज्येष्ठ और कनिष्ठ पुत्रों के प्राणों के से चुकानी पड़ी, और इसने रविवार के कानून के समय के यरीहो का प्रतिरूप प्रस्तुत किया। 1863 नौविवार के कानून का प्रतिरूप ठहरता है। ये अनुच्छेद प्रतीकवाद से परिपूर्ण है, जो उस कालखंड को 144,000 की मुहरबंदी का काल ठहराता है, और उसी काल में हबक्कुक की 1843 की तालिका पर प्रदर्शित था एक सत्य के विषय में मिलर की समझ को अस्वीकार करना मूलभूत विद्रोह है, जिसमें परमेश्वर के चुने हुए दूत की अवहेलना भी उसी बहाने से शामिल है जैसा कोरा के विद्रोहियों और 1888 के विद्रोहियों का था, जिन्होंने ये दावा किया कि समस्त मंडली पवित्र है। हम अब मंदिर की उस परीक्षा में हैं जब स्वर्ग के झरोखे युग व्यवस्था के एक द्वार के साथ साथ खुलते हैं। ये युग व्यवस्था का द्वार याजकों के लिए लाओदिकिया से फिलाडेल्फिया के याजकों की ओर संक्रमण को चिह्नित करता है। ये मिलर के स्वप्न के नकली और सच्चे रत्नों के पृथक्करण को चिह्नित करता है। झरोखे श्राप या आशीष की पहचान कराते हैं। मलाकी 3 परीक्षा को लौट आने पर आधारित करता है। मिलर का स्वप्न याजकत्व और संदेश दोनों की पुनर्स्थापना पर बल देता है। प्रकाशित वाक्य 19 उस प्रभु की सेना की पहचान कराता है जो तब उत्थापित की जाती है जब इस्लाम के विषयक नरसिंगे के संदेश की एक भविष्यवाणी पूरी होती है। वो परीक्षा जो तुरही के संदेश की लिटमस कसौख से पूर्व आती है दूसरी है, और वो मंदिर परीक्षा है। मिलर का स्वप्न एक दोहराव उत्पन्न करता है जो सदैव दूसरी परीक्षा से संबद्ध रहता है, क्योंकि मिलर का स्वप्न रत्नों का उपयोग संदेशों के रूप में भी और संदेशवाहकों के रूप में भी करता है। मंदिर परीक्षा में पश्चात वर्षा की रेखा पर रेखा पद्धति का अनुप्रयोग सम्मिलित है। ये याजकों से अपेक्षा करता है कि वे संदेशों को संरेखित करने के लिए भविष्यवाणी की विविध रेखाओं में मंदिर को देखें। धूल ब्रश वाले मनुष्य का बड़ा संदूक 144,000 का मंदिर है, और मलाकी का भंडार गृह भी वही है। मंदिर की सज्जा का हृदय स्थल वाचा का संदूक है जिसकी ओर आवरण करने वाले करूब निरंतर दृष्टि लगाए रहते हैं, और इस प्रकार वे सभी पवित्र प्राणियों के केंद्र बिंदु को रेखांकित करते हैं। इस इतिहास में पवित्र जनों के लिए मंदिर की ओर देखना और वाचा के संदूक में निहारना आवश्यक है। 144,000 का मंदिर लैव व्यवस्था अध्याय 23 का विषय है, और ये एक ऐसी ऐतिहासिक रेखा प्रस्तुत करता है जो मसीह के समय में बहन वाइट के अनुसार पिंतेकुस्त का काल कहलाने वाली अवधि के साथ पूरी हुई। पुनरुत्थान से पिंतेकुस्त तक या 31 दिसंबर 2023 से रविवार के कानून तक लैव व्यवस्था अध्याय 23 की भविष्य सूचक रेखा 144,000 के मंदिर का निरूपण करती है। वो इतिहास तीन चरणों के एक मार्ग चिन्ह से आरंभ होता है जिसके बाद 5 दिन आते हैं, और तीन चरणों के एक मार्ग चिन्ह पर समाप्त होता है जिसके बाद 5 दिन आते हैं। अल्फा और ओमेगा इतिहासों के मध्य याजकों की मुहरबंदी के 30 दिन आते हैं। वो समग्र रेखा 7वें दिन के सप्त से आरंभ होती है और 7वें वर्ष के सप्त पर समाप्त होती है। इस स्तर पर 144,000 का मंदिर वो संदूक है जो 8 आत्माओं को नवनिर्मित पृथ्वी तक ले जाएगा, और वो वाचा का संदूक भी है जिसे 2 स्वर्गदूत आच्छादित करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिंतेकुस्त के काल के साथ निरुपय 144,000 की याजकता के मंदिर पर वे 2 सप्त छाया करते हैं। लैव व्यवस्था का 23वां अध्याय उस पिंते के उस्तीय काल के अंतिम प्रगटीकरण के दौरान 144,000 के याजकत्व के विषय में है, जो मसीह के पुनरुत्थान से आरंभ होकर 50वें दिन पिंतेक के दिन तक चला। पिंतेक कुस्तीय काल तब स्थापित होता है जब लैव्य व्यवस्था अध्याय 23 के प्रथम 22 पदों को उसके अंतिम 22 पदों के साथ समांतर रखा जाता है। विलियम मिलर का स्वप्न ये दर्शाता है कि परमेश्वर के वचन के रत्न संदेश भी हैं और संदेशवाहक भी।
मुझे अनुभव प्राप्त करने के बहुमूल्य अवसर मिले हैं। मुझे स्वर्गदूतों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय संदेशों के संबंध में अनुभव हुआ है। स्वर्गदूतों को स्वर्ग के बीचों बीच उड़ते हुए दर्शाया गया है जो संसार को चेतावनी का संदेश सुना रहे हैं, और जिनका इस पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दिनों में जी रहे लोगों पर सीधा प्रभाव है। इन स्वर्गदूतों की आवाज़ कोई नहीं सुनता, क्योंकि वे परमेश्वर के उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रतीक हैं जो स्वर्गीय ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में कार्य कर रहे हैं। पुरुष और महिलाएं जो परमेश्वर की आत्मा से प्रबुद्ध हैं और सत्य के द्वारा पवित्र किए गए हैं, इन तीनों संदेशों को उनके क्रम में घोषित करते हैं। लाइफ स्केचेस 429।
स्वर्गदूत परमेश्वर की उस प्रजा की प्रतीक है जो परमेश्वर दूत द्वारा निरूपित संदेश की घोषणा करती है।
समय अल्प है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्वर्गदूत के संदेश वे संदेश हैं जिन्हें विश्व को दिया जाना है। हम तीनों स्वर्गदूतों का स्वर शाब्दिक रूप से नहीं सुनते, परंतु प्रकाशित वाक्य में ये स्वर्गदूत एक प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पृथ्वी पर होगी और ये संदेश देगी।
यूहन्ना ने देखा एक और स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरता आया जिसके पास बड़ा अधिकार था, और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशित हो गई। प्रकाशित वाक्य 18:1। वो कार्य परमेश्वर की प्रजा की आवाज़ है जो संसार को चेतावनी का संदेश घोषित करती है। द 1888 मटीरियल्स 926।
स्वर्गदूत उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्वर्गदूतों द्वारा निरूपित संदेशों का प्रचार करते हैं। विलियम मिलर का भविष्यवाणी की दृष्टि से बहुविध अनुप्रयोगों में प्रतिनिधित्व किया गया है। उन अनुप्रयोगों में से एक यह है कि जिन प्रथम और अंतिम समय भविष्यवाणियों का प्रचार करने के लिए वो प्रेरित किया गया था, उन्हीं द्वारा मिलर का प्रतिनिधित्व होता है। सात काल अथवा 2520 वर्ष जो 1798 में समाप्त हुए, मिलर की अल्फा खोज थी और 22 अक्टूबर 1844 को 2300 संध्या प्रातः के अंत में पवित्र स्थान की शुद्धि मिलर की ओमेगा प्रचार थी। मिलराइट इतिहास 1798 से 1844 तक निरूपित होता है और यद्यपि वो प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों का इतिहास था, तथापि उसे उस इतिहास के दूत के नाम से पुकारा जाता है। मिलराइट इतिहास ये प्रतिपादित करता है कि मिलर प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों के संदेश का उद्घोष करने वाला सर्व था। प्रथम स्वर्गदूत ने 22 अक्टूबर 1884 को न्याय का आरंभ घोषित किया और अंत के समय 1798 में सात काल के अंत में इसराइल के राज्य के तितर बितर होने के निष्कर्ष पर वही प्रथम स्वर्गदूत प्रकट हुआ। मिलर 2522 वर्षीय भविष्यवाणी और 2300 वर्षीय भविष्यवाणी दोनों के प्रतीक हैं। 27 साल नाइट का प्रथम मार्ग चिन्ह ये घोषित करता था कि जब 22 अक्टूबर 1844 को 2300 वर्ष समाप्त होंगे तब न्याय आरंभ होगा। तब प्रभु ने सातवें दिन के सप्त का प्रकाश प्रकट किया और उनका उद्देश्य उस कार्य को पूरा करना था, इसलिए उन्होंने 1856 में सात समय के विषय में और अधिक प्रकाश प्रकट करने का प्रयास किया, परंतु विश्वास के स्थान पर विद्रोह प्रकट हो गया। सात समय मिलराइट इतिहास का अल्फा है और 2300 ओमेगा है। सात काल का निरूपण सातवें वर्ष के सप्त द्वारा होता है और 2300 का निरूपण सातवें दिन के सप्त द्वारा होता है। मिलराइटों का इतिहास 1779 और 1844 द्वारा निरूपित होता है। 1779 सात काल का और 1844 2300 वर्षों का प्रतिनिधि है। वे दोनों सप्त लैव्य व्यवस्था 23 में निरूपित इतिहास के दो सीमा चिन्ह हैं। वे दोनों सप्त दो संदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मिलकर एक ही संदेश बनाते हैं। वे दोनों संग मिलराइटों का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि जो लोग इन संदेशों की घोषणा करते हैं वे उन स्वर्गदूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्वयं संदेश के प्रतीक हैं। 1779 में प्रथम स्वर्गदूत प्रकट हुआ और 1844 में तृतीय स्वर्गदूत प्रकट हुआ। लैव्य व्यवस्था अध्याय 23 में सात पर्व और सात पवित्र सभाएं हैं। यद्यपि प्रत्येक पर्व पवित्र सभा नहीं है और इसका उल्टा भी सत्य है, सभी पर्व पहली और अंतिम पवित्र सभा प्रारंभ में सातवें दिन का सप्त और अंत में सातवें वर्ष का सप्त के बीच आते हैं। पर्वों का इतिहास उन दो सप्तों द्वारा दोनों छोरों पर सीमाबद्ध है जी विलियम मिलर और मिलराइटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब लैव्य व्यवस्था अध्याय 23 में प्रथम 22 पदों को अंतिम 22 पदों के साथ जोड़ा जाता है तब पिंतेकुस्त का काल पहचाना जाता है। पदों को साथ रखकर जो संरचना स्थापित होती है वो सर्वथा दैवीय है। उस संरचना का पिंतेकुस्तीय काल तीन स्वर्गदूतों के तीन चरणों को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करता है। यह सत्य के हस्ताक्षर वहन करना खे करता है। ये अल्फा और ओमेगा के हस्ताक्षर वहन करता है। ये पालमोनी के हस्ताक्षर वहन करता है। ये एक विद्यार्थी को परम पवित्र स्थान के हृदय केंद्र तक ले जाता है। ये 1,44,000 के मंदिर की पहचान कराता है। ये नवनिर्मित पृथ्वी तक विस्तृत है। लाइव व्यवस्था अध्याय 23 का ये सत्य अब उस मंदिर परीक्षा के संदर्भ में उद्घाटित किया जा रहा है जो लिटमस परीक्षा और तीसरी परीक्षा से पूर्व आती है। तीसरा स्वर्गदूत 1844 में आया और फिर 9/11 को और फिर 2023 में। जब 1844 में तीसरा स्वर्गदूत आया तब निष्ठावान जनों को विश्वास से मसीह का अनुसरण करते हुए परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना था। लाइव व्यवस्था अध्याय 23 परम पवित्र स्थान तक का मार्ग है और वो मंदिर परीक्षा के एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यूहन्ना से कहा गया कि वो मंदिर को तथा उसमें उपासना करने वालों को भी मापे। मिलर की रत्न पेटिका ही मंदिर है और उसके रत्न उसमें विद्यमान उपासक हैं। मलाकी का भंडार ग्रह ही मंदिर है और दशमांश उसमें विद्यमान उपासक है। लेव्य व्यवस्था 23 के रेखा पर रेखा अनुप्रयोग में जिस प्रकार पिंतेकुस्त का काल निरूपित है, वो 1,44,000 के मंदिर का प्रतिनिधित्व करता है और अधिक प्रत्यक्ष रूप से ये वाचा का संदूक निरूपित करता है, जिसमें ढांपने वाले करूब 10 आज्ञाओं, कोंपलित हुई हारून की छड़ी और मन्ना का स्वर्ण कलश निहार रहे हैं। आच्छादन करने वाले करूब स्वर्गदूत है और स्वर्गदूत है संदेश तथा संदेशवाहक का प्रतिनिधित्व करते हैं। लैव्य व्यवस्था अध्याय 23 का अल्फा संदेश 7वें दिन का सप्त है और ओमेगा संदेश 7वें वर्ष का सप्त है। ये दोनों संदेश है और ये विलियम मिलर तथा मिलर राइट्स के भी अल्फा और ओमेगा संदेश है। 7 काल की 1798 पर हुई पूर्ति 7वें वर्ष के सप्त का प्रतीक थी और 1844 में परमेश्वर ने अपने लोगों को परम पवित्र स्थान में प्रवेश कराया, जहां उन्होंने 7वें दिन के सप्त की खोज की। वे दोनों सप्त लैव्य व्यवस्था अध्याय 23 में प्रथम और अंतिम पवित्र सभाएं हैं और पिंतेकुस्त का पर्व काल उन दोनों के बीच स्थित है, जैसे संदूक दो आच्छादन करने वाले करूबों के बीच स्थित था। मंदिर का मापन किया जाना है और इसमें उस आंगन को माप से बाहर रखना भी सम्मिलित है जो अन्य जातियों को दिया गया है। रविवार के कानून के समय परमेश्वर के घराने का न्याय समाप्त होता है और अन्य जातियों का न्याय आरंभ होता है। अन्य जातियों का समय उत्तराखंड में 1,260 वर्षों की समाप्ति पर समाप्त हुआ और 3.5 दिनों के अंत में, जो 1,260 का एक प्रतीक है, यूहन्ना को उस आंगन को माप से बाहर रखना था।
और मुझे एक सरकंडा दिया गया जो छड़ी के समान था और स्वर्गदूत खड़ा हुआ और कहा, उठ और परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उनमें उपासना करने वालों को नाप, परंतु जो आंगन मंदिर के बाहर है उसे छोड़ दे और उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक पैरों तले रौंदेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:2।
प्रांगण को छोड़ दिया जाना था क्योंकि वो अन्य जातियों को सौंप दिया गया था, जिन्होंने उसे 3.5 दिन या 42 महीने तक पैरों तले रौंदा।
और वे तलवार की धार से गिरेंगे और सब जातियों में बंदी बनाकर ले जाए जाएंगे और यरूशलेम अन्य जातियों के पैरों तले रौंदा जाएगा जब तक कि अन्य जातियों के समय पूरे ना हो जाए। लूका 21:24।
अन्य जातियों का काल 1758 में पूरा हुआ जब दानियेल की पुस्तक की मुहर खोली गई।
यरूशलेम के मंदिर में एक नीची दीवार बाहरी प्रांगण को पवित्र भवन के अन्य सभी भागों से पृथक करती थी। इस दीवार पर विभिन्न भाषाओं में शिलालेख अंकित थे, जिनमें ये घोषित था कि यहूदियों के सिवा किसी को भी इस सीमा को पार करने की अनुमति नहीं थी। यदि किसी अन्य जाति ने अंतः परिसर में प्रवेश करने का दुस्साहस किया होता तो वो मंदिर का अपवित्रीकरण करता और अपने प्राणों से उसका दंड भुगतता। परंतु यीशु, जो मंदिर और उसकी आराधना व्यवस्था के प्रवर्तक हैं, ने मानवीय सहानुभूति के बंधन द्वारा अन्य जातियों को अपनी ओर आकर्षित किया और उनके दिव्य अनुग्रह ने उन्हें वो उद्धार प्रदान किया जिसे यहूदियों ने अस्वीकार कर दिया था। द डिजायर ऑफ एजेस 194।
23 दिसंबर 2023 को 18 जुलाई 2020 की निराशा से आरंभ होकर गिने जाने वाले 3.5 भविष्य सूचक दिनों का समापन हुआ। वे 3.5 वर्ष ये इंगित करते हैं कि तब एक भविष्य सूचक संदेश की मुहर खोली जाएगी और ये कि अन्य जातियों का समय पूरा हो गया और उसे मंदिर तथा उसके भीतर के उपासकों के मापन से छोड़ दिया गया। रविवार के कानून के समय, जो पिंतेकुस्ती काल में पिंतेकुस्त का दिन था, न्याय अन्य जातियों की ओर स्थानांतरित होता है। जब हम 1,44,000 के मंदिर का मापन करते समय अन्य जातियों के समय को अलग रखते हैं, तो हम पाते हैं कि 3 दिसंबर 2023 से लेकर रविवार के कानून तक का काल ही मंदिर है। मंदिर का साक्ष्य ये है कि उसे दो चरणों में स्थापित किया जाता है, पहले नींव, फिर जब वो आधारशिला जिसे अस्वीकार किया गया था अद्भुत रीति से कोने का सिरा बन जाती है, तब मंदिर को पूर्ण ठहराया जाता है। प्रथम फरमान के इतिहास में जब प्राचीन इज़राइल बाबेल से निकला तब नींव रखी गई और मंदिर दूसरे फरमान के इतिहास में परंतु तीसरे फरमान से पहले पूर्ण हुआ। नींव की परीक्षा 2024 में हुई और अब हम मंदिर की परीक्षा में हैं। वो मंदिर की परीक्षा तीसरी और लिटमस परीक्षा पर समाप्त होती है और ये मंदिर की परीक्षा आवश्यक ठहराती है कि परमेश्वर की प्रजा मंदिर को मापे। लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 का मंदिर 31 दिसंबर 2023 से लेकर रविवार के कानून तक खड़ा किया जाता है और उस भविष्यवाणी संबंधी इतिहास में वे तीन परीक्षाएं निरूपित हैं जो हर बार तब घटित होती हैं जब किसी भविष्यवाणी की मुहर खोली जाती है। उन तीनों में अंतिम लिटमस परीक्षा है जिसका निरूपण एक्सेटर के शिविर सम्मेलन द्वारा किया गया था। उस सभा में या तो आप उस तंबू की बैठकों में सम्मिलित हुए जहां एल्डर स्नो ने सत्य मध्य रात्रि की पुकार का अपना संदेश दो बार प्रस्तुत किया, अथवा आप वाटरटाउन के तंबू में होने वाली भावुक और असंतुलित सभाओं में गए। जब वे सभाएं समाप्त हुईं, तो सत्य मध्य रात्रि की पुकार का संदेश ज्वारीय लहर की भांति उमड़ पड़ा। एक्सेटर वही लिटमस परीक्षा था और लिटमस परीक्षा मुहरबंदी का प्रतिनिधित्व करती है। एक्सेटर की शिविर सभा का प्रतीक रूप मसीह का यरूशलेम में विजयी प्रवेश था और लाजर उस गधे को आगे आगे ले चला जिस पर यीशु सवार थे। लाजर की मृत्यु 18 जुलाई 2020 की निराशा थी, परंतु वो मसीह का सर्वोपरि चमत्कार और उनके देवत्व की मुहर भी था।
यदि मसीह रोगी कक्ष में होते तो लाजरस नहीं मरता, क्योंकि शैतान को उस पर कोई सामर्थ्य न होता। जीवनदाता की उपस्थिति में मृत्यु लाजरस पर अपना बाण न साध सकती थी, इसलिए मसीह दूर ही रहे। उन्होंने शत्रु को अपनी शक्ति का प्रयोग करने दिया ताकि वे उसे एक पराजित वैरी के रूप में पीछे हटा दें। उन्होंने लाजरस को मृत्यु के आधिपत्य के अधीन जाने की अनुमति दी और पीड़ित बहनों ने अपने भाई को कब्र में रखे जाते देखा। मसीह जानते थे कि जब वे अपने भाई के मृड़ मुख को देखेंगी तो उनके उद्धारकर्ता पर उनका विश्वास कठोर परीक्षा में डाला जाएगा, पर वे ये भी जानते थे कि जिस संघर्ष से वे अब होकर गुजर रही हैं उसके कारण उनका विश्वास कहीं अधिक सामर्थ्य के साथ प्रदीप्त होगा। उन्होंने वो प्रत्येक शोक पीड़ा सही जो वे सह रही थीं। उनके ठहरने के कारण उन्होंने उनसे तनिक भी कम प्रेम नहीं किया, पर वे जानते थे कि उनके लिए, लाजरस के लिए, अपने लिए और अपने शिष्यों के लिए एक विजय प्राप्त की जानी है। तुम्हारे हित के लिए, इस उद्देश्य से कि तुम विश्वास करो, परमेश्वर के मार्गदर्शक हाथ का स्पर्श पाने के लिए जो सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी निराशा का क्षण वही समय होता है जब दैवीय सहायता सर्वाधिक निकट होती है। वे अपने मार्ग के सर्वाधिक अंधकारमय भाग की ओर कृतज्ञता के साथ पीछे मुड़कर देखेंगे। प्रभु धर्मपरायणों को कैसे छुड़ाना है ये जानता है। 2 पत्रस 2:9, प्रत्येक प्रलोभन और प्रत्येक परीक्षा से वो उन्हें अधिक दृढ़ विश्वास और अधिक समृद्ध अनुभव के साथ बाहर निकाल लाएगा। लाजरस के पास आने में देर करने का मसीह का उन लोगों के प्रति दया से भरा एक उद्देश्य था जिन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने विलंब किया ताकि लाजरस को मृतकों में से जिलाकर वे अपने हठी अविश्वासी लोगों को एक और प्रमाण दें कि वे सचमुच पुनरुत्थान और जीवन हैं। वे लोगों, इसराइल के घराने की गरीब भटकी हुई भेड़ों के लिए सारी आशा छोड़ देने में अनिच्छुक थे। उनके पश्चाताप न करने के कारण उनका हृदय टूट रहा था। अपनी दया में उन्होंने ये ठाना कि वे उन्हें एक और प्रमाण दें कि वे पुनर्स्थापक हैं, वही जो अकेले जीवन और अमरता को प्रकाश में ला सकते हैं। ये ऐसा प्रमाण होना था जिसे याजक गलत अर्थ में नहीं ले सके। बेथानी जाने में उनके विलंब का यही कारण था। ये सर्वोच्च चमत्कार, लाजरस को जिलाना, उनके कार्य और उनकी दिव्यता के दावे पर परमेश्वर की मुहर लगाने वाला था। द डिजायर ऑफ एजेस 5:8-5:9।
विजयी प्रवेश का आरंभ इससे हुआ कि मसीह के उस पर प्रारूढ़ होने हेतु एक गधे को खोला गया।
और जब वे यरूशलेम के निकट आए और जैतून के पहाड़ पर स्थित बेथफगे को पहुंचे, तब यीशु ने 2 शिष्यों को ये कहकर भेजा, अपने सामने वाले गांव में जाओ और तुरंत तुम्हें एक गदही बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आना, और यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना
प्रभु को उनकी आवश्यकता है और वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गदही पर और गदहे के बच्चे पर, जो गदही का बच्चा है, बैठा हुआ। तब शिष्य गए और जैसा यीशु ने उन्हें आज्ञा दी थी वैसा ही किया। मत्ती 21:09।
आधी रात की पुकार का संदेश उस दूसरे स्वर्गदूत के संदेश के साथ संयुक्त हो गया जो प्रथम निराशा के समय आया था। मसीह के समय वो निराशा लाजर की मृत्यु थी और मिलरवादियों के लिए वो 1843 संबंधी भविष्यवाणी का विफल होना था जो 19 अप्रैल 1824 को हुआ। वे दोनों निराशाएं 18 जुलाई 2020 का प्रतिनिधित्व करती हैं। लैव्य व्यवस्था अध्याय 23 में निरूपित पिंतेकस्तीय काल में कसौटी तुरहियों के पर्व, मसीह के स्वर्गारोहण और प्रायश्चित दिवस के त्रिविध मार्ग चिन्ह द्वारा अभिव्यक्त की गई है। वे तीन चरण नीह और मंदिर की प्रथम दो परीक्षाओं के संदर्भ में उसी कसौटी का निरूपण करते हैं। ये तीन चरण पिंतेकस्तीय रविवार विधान से 5 दिन पूर्व घटित होते हैं और 1,44,000 को पताका के रूप में ऊंचा उठाए जाने के द्योतक है। यदि वे इस कसौटी पर खरे उतरते हैं तो वे ऊंचे उठाए जाते हैं, यदि नहीं तो वे मिलर के स्वप्न की खिड़कियों से बाहर उड़ा दिए जाते हैं। मुद्रांकन का दृश्य तृतीय चरण प्रायश्चित का दिन है और वो पापों के मिटाए जाने का प्रतिनिधित्व करता है। द्वितीय चरण मलाकी की लेवियों की भेंट का उत्थापन है और प्रथम चरण नरसिंगो का संदेश है। 1846 से मानव जाति सातवें नरसिंगे के बजने के इतिहास में जी रही है। सातवें नरसिंगे का बाह्य संदेश इस्लाम की तीसरी हाय का संदेश है और सातवें नरसिंगे का आंतरिक संदेश मसीह का अपने देवत्व को 1,44,000 की मानवता के साथ संयुक्त करने का कार्य है। हम अगले लेख में जारी रखेंगे।
भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में वे दृश्य चित्रित हैं जो यद्यपि अत्यंत प्राचीन हैं, हमें नवीन प्रकाशनाओं की ताजगी और सामर्थ्य में प्रकट होते हैं। विश्वास के द्वारा हम ये समझते हैं कि बीते युगों में अपने लोगों के साथ परमेश्वर के व्यवहार के ये अभिलेख इस उद्देश्य से संरक्षित रखे गए हैं कि हम वर्तमानकालीन अनुभवों के द्वारा बेप्रकट है परमेश्वर हमें जो शिक्षाएं सिखाना चाहता है उन्हें विवेकपूर्वक समझ सकें। चूंकि हम उतने ही अत्यंत निर्णायक काल में जी रहे हैं जितना मसीह के द्वितीय आगमन के ठीक पूर्व का काल है, इसलिए हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि हम मसीह के प्रथम आगमन के समय की यहूदियों द्वारा की गई भूलों के समान भूले न करें। यहूदी नेताओं के समान जिन्होंने क्रमशः उपासना की एक औपचारिक प्रणाली उद्भावित की जिसमें अनावश्यक बातों के महत्व को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया, कुछ मनुष्य अब इस संकट में हैं कि वे इस पीढ़ी पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण सत्यों को दृष्टि से ओझल कर बैठें और उन बातों की खोज करें जो नई, विचित्र और मंत्रमुग्धकारी हैं। उच्च कोटि के सिद्धांतों को आदरपूर्वक संजोए रखना आवश्यक है। जो काल्पनिक विचारों की खोज करते और उनका समर्थन व प्रचार करते हैं उन्हें दूसरों को शिक्षा देने का प्रयास करने से पहले ये सिखाया जाना चाहिए कि सत्य क्या है। मानव निर्मित सिद्धांतों और परिकल्पनाओं को सत्य के रूप में नहीं खोजना चाहिए। बहुत से ऐसे हैं जो सिद्धांत के प्रति इस बात के समान सत्यनिष्ठ और अटल हैं और ये सहायता पाएंगे और आशीषित होंगे, क्योंकि वे द्वार प्रांगण और वेदी के बीच रोते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर और अपनी निज विरासत को तिरस्कार के लिए ना दे। हमें तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट और पृथक रूप से उभरने देना चाहिए। हमारे विश्वास के महान स्तंभ होने पर रखे जा सकने वाले समस्त भार को वहन करेंगे। ब्रह्म, दिवास्वप्न और कल्पनालीनता के इस युग में हमें मसीह की शिक्षा के प्रथम सिद्धांतों को सीखने की आवश्यकता है। आइए हम यत्न करें कि हम प्रेरित के साथ ये कह सकें, जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की शक्ति और आगमन का ज्ञान कराया तब हमने चतुराई से गढ़ी हुई कथाओं का अनुसरण नहीं किया। प्रभु हमें उच्च और उदात्त सिद्धांतों का अनुसरण करने के लिए बुलाते हैं। सत्य, वर्तमान सत्य वैसा ही है जैसा परमेश्वर का वचन उसे प्रतिपादित करता है। प्रभु चाहता है
कि उसकी प्रजा अपने आप को हर प्रकार की अनावश्यकताओं से और उन सब बातों से जो रहस्यवाद की ओर ले जाती हैं दूर रखे, जिन पर कल्पनारम्य और काल्पनिक सिद्धांतों में लिप्त होने का प्रलोभन आता है, वे स्वर्गीय सत्य की खदानों में गहराई तक उत्खनन करें और उस निधि को प्राप्त करें जो उसे ग्रहण करने वाले के लिए अनंत जीवन का अर्थ रखता है। वचन में अत्यंत बहुमूल्य सत्य निहित हैं। इन्हें वे पाएंगे जो गंभीरता से अध्ययन करते हैं, क्योंकि स्वर्गीय दूत उनकी खोज का मार्गदर्शन करेंगे। जो वर्तमान में पृथ्वी पर जीवित हैं, उनके विषय में पौलुस ने घोषणा की, समय आएगा जब वे स्वस्थ उपदेश को सहन न करेंगे, परंतु अपनी ही वासनाओं के अनुसार अपने लिए ऐसे उपदेशक जमा कर लेंगे जो उनके कानों को गुदगुदाएं, और वे सत्य से अपने कान फेर लेंगे और कथा कहानियों की ओर मुड़ जाएंगे। जो स्वस्थ शिक्षा को सहन न करेंगे, उनके विषय में भविष्यवाणी करते समय पौलुस ने जो गंभीर आज्ञा दी, वह कितनी महत्वपूर्ण, कितनी आत्मा झकझोर देने वाली है। इसलिए मैं तुझे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह, जो अपने प्रकटन और अपने राज्य में जीवितों और मृतकों का न्याय करेगा, के सामने आज्ञा देता हूँ, वचन का प्रचार कर, समय पर और असमय पर तत्पर रह, भर्त्सना कर, डांट और समझा, संपूर्ण धैर्य और शिक्षा के साथ। जो परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, वे धर्म के सूर्य के प्रकाश में चलते हैं। वे परमेश्वर के सामने अपनी चाल चलन को भ्रष्ट करके अपने उद्धारकर्ता का अपमान नहीं करते। उन पर स्वर्गीय ज्योति चमकती है। जैसे जैसे ये पृथ्वी का इतिहास अपने अंत के निकट आता है, मसीह के विषय में और उससे संबंधित भविष्यवाणियों के विषय में उनका ज्ञान बहुत बढ़ता जाता है। परमेश्वर की दृष्टि में वे अनंत मूल्य के हैं, क्योंकि वे उसके पुत्र के साथ एकता में हैं। उनके लिए परमेश्वर का वचन अतुलनीय रूप से सुंदर और मनोहर है। वे उसकी महत्ता को देखते हैं। सत्य उनके लिए उद्घाटित होता है। देह धारण का सिद्धांत कोमल आभा से आलोकित हो उठता है। वे देखते हैं कि पवित्र शास्त्र वो कुंजी है जो सब भेद खोलती है और सब कठिनाइयों का समाधान करती है। जिन्होंने प्रकाश को ग्रहण करने और प्रकाश में चलने से इनकार किया है, वे भक्ति का भेद समझने में असमर्थ होंगे, परंतु जिन्होंने क्रूस उठाने और यीशु का अनुसरण करने में संकोच नहीं किया, वे परमेश्वर के प्रकाश में प्रकाश देखेंगे। द साउदर्न वॉचमैन, 4 अप्रैल 1905।